તારીખ 11/5/1992 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 766 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 370.
રાસ્તા પર કોઈ પીડિત પ્રાણી હોય કોઈ નથી પીવો, બકરી ગાય કુતા રોમિષો પરિસર્ય આપો કિલ્લા આપો જે કઈ ગયા હતા લોકો પણ કોઈ પ્રસન્નથી તમારે માસિક હસતો હો માસિક ના હતો શુક્ર બધું કરાય શુક્રો બધું પ્રસન્ન આવે ભગવાન કી જીન પ્રતિમા હૈ વર્તમાન અનંત સ્વપ્ન દે રહે કેસા ક્યા હૈ કેવળ જ્ઞાન હૈ અનંત સ્વસંવેદન રૂપ હૈકર સામાન્ય અપના સ્વસંવેદન કા સ્મરણ હોતા અંતર્મુખ હોને કા ભાવ હૈકિત હોતા વિદ્રાગતા કી અભિલાષા હોતી હૈ ભગવાન કો સંસ્કાર લેને પરિણામ હૈ યોગ્યતા હૈ અપના ધર્મ હૈકા ધર્મ નહીં હૈ ધર્મ કો
દર્શન કરના ચાહીએ ભગવાન
યહાં થી નહીં નિકલતા હૈ ગાય ભેંસ કે લી સભી શરમ દે રહે લડકે કોઈ લેકિન રાસ્તા પર પડા હોય પાણી દુખી હોય તો તુજે કું બતા બતા નહીં ઉત્તરાસ્તા પર દેખો તુજે ઉત્તરાસ્તા કા ભાવ આયા તુજે નિત્ય દર્શન દિન દર્શન કરના યોગ્ય હિન્દુ વ્યવહાર કે પરિપાટી હૈ પરમાર્થ છુપા
અનુપમતા અજ્ઞાની
નિષ્કારણ
કરવા
હા નિષ્કારણ કરવા પોતાની જાગૃતતા બીજાને દૂર પોતાને અપને દેહ કે લીધે સુખા સુધા કા કોઈ નિકાલને કા પ્રયાસ નહીં કરે કોઈ ભી અપને કો સુખા સુધા લગે નહીં નિકાલ તો કોઈ દૂસરા પ્રાણી જો સુધા તો સુખા તો દેખેગા અપને શરીર મેં રોગ હો રહા હૈકો મિટાને કે લીધે વો કોઈ પ્રયત્ન નહીં કરતો ઘાય હોય આનંદા કે નહીં દુસરા કોઈ દેખે તો જો અપને લી નહીં કરતા હૈ જીસકો સાવર દશા મેં હસ્તા હોય અપને લીધે જો દુસરા દવાઈ વગેરે કા જો વિકલ્પ કરતા હૈ તો ન્યાય બનતા નહીં તો દૂસરા આત્મા આત્મતા અપને વાલે તો કરને કે લીધે
નિષ્કારણ કરુણા ભાવ થી કરે
નિષ્કારણ કરુણા ભાવ તો એ રીતે કે જન્મ મરણ ની જો ભૂલતે હૈ એસે જીવ જો જન્મ મરણ સે કા રાસ્તે સે પરિભ્રમણ કા રાસ્તે સે નિકાલ કરકે उसको संवाद में लाने का जो विकल्प है वो निष्कार ज्ञानी का निष्कार वो संवाद में चलते हैं तो देखते हैं कि मुझे कोई लेना देना तो नहीं। ये प्राणी बेचारा अपने स्वरूप को भुला हुआ है, वो तो स्वरूप में भी अनुभव करता पर तो स्वरूप में अनुभव नहीं करता, तो उसकी भूल अगर मिल गई तो सुखी हो जाएगा, मुझे तो कोई लेना देना है नहीं।
उसमें भी इच्छा का भाव तो हो गया,
इच्छा हो गई, उतना राग है, उतना निष्कारण करना का भी राग है, प्रशस्त राग है, तो उन निष्कारण अनुकंपा करने में कोई लेते हैं तो ये तो अज्ञानी की अनुकंपा हुई, अपने चित्र में आपको विचार होगी तो अज्ञानी की अनुकंपा, और ज्ञानी की अनुकंपा तो नीचे की भूमिका में क्या,
नीचे की भूमिका में
नीचे का नियम क्या, तो सब ग्रंथ दशा में चतुर्थ पंच चतुर्थ में
नहीं
बताया नीचे की भूमिका में विहार करते वक्त स्वयं नीचे के अनुष्ठान में भक्तता हो गए तब जन्मार्थ में निमग्न जगत का अवलोकन से क्या जन्मार्मे समुद्र जन्म रूपी जन्म मरण के समुद्र में जो डूबते हैं ऐसे जगत के अवलोकन से अर्थात संसार सागर में डूबे हुए जगत को देखने से मन में थोड़ा खेद होना क्या
मन में थोड़ा
खेद होना सिर्फ रास्ता नहीं जानते हैं इसलिए है। अगर उनको सही बात मालूम हो कि मैं क्या हूं पर क्या है तो उनको पूरा होने वाला नहीं मन में होगा तो उतनी सी बात उनकी समझ में आ जाए तो सभी मिल सकता है जैसे मैं सुखी हुआ हूँ वो सुखी हो जाएगा
પરમ જ્ઞાની જે અનુકંપા હોય એટલે કે તેમના અનુષ્ઠાનમાં જે અનુકંપા આવે છે કે જેથી કરીને દિવ્ય ધ્વનિ ફરે છે જેથી કરીને દિવ્ય ધ્વનિ ફરે છે તો એ કઈ અનુકંપા કહેવાય
અનુકંપા वास्तव में केवल ज्ञानी को विकल्प नहीं राग नहीं भूतकाल में जो राग हुआ था सर्वस्थ हुए जगत के प्राणी दुखी है सभी जगत के प्राणी सुखी हो जाए ऐसी मेरी भावना है कोई भी जगत में दुखी नहीं है ऐसी जो मेरी विशाल भावना आती है किसी का क्षेत्र को तुम्हारा उसको उसके सुंदर चक्र से प्राप्त होने और पूर्ण विकराल होने के बाद तेरहवें दिन स्थान में इसका उदय चालू होता है बिना विकल्प वे एक ऐसी चीज है कि जिसमें इच्छा अनिच्छा की अपेक्षा नहीं है जैसे रोग होता है तो इच्छा पर रोग रोग होता है नहीं इच्छा हो तो भी उदय को आ जाता है ऐसे केवल ज्ञानी को भी पृथ्वी के प्रशस्त का जो बंद किया है तो केवल संस्थान में रेणु होता है तो दिव्य धन बिना इच्छा निकलती है उसका इच्छा होती बिना इच्छा तो उसको कहते हैं कि जगत पर अनंत करना है तीर्थंकर देव की जगत पर अनंत करना है क्योंकि बहुत दिनों को दुख निकालने का उपाय उसकी वाणी में प्रसिद्ध होता है उपाय का प्रकाशन होता है तो उसका उसको अनुकंपा है वास्तव में वहां दया का विकल्प तथा मन प्रसाद का परिणाम न होता नहीं क्योंकि प्रसाद का फल हो गया है बाल हिंदुस्तान सभी प्रकार का क्षय को बाल हिंदुस्तान में खत्म हो गया तेरह हिंदुस्तान में कोई प्रसाद का भाव है या मन ऐसा संभव
नहीं है
सुन उसका भगवान को भी निष्कर्म करुणा होती है ऐसा भी कहते हैं और जिसको मालूम है वो ऐसे कहते हैं कि भगवान की तो जितना भी करुणा है क्या कहते हैं दूसरा भी गुण का नाम देते हैं, वो गुणा का पुष्पम पर को वो विशेषण लगता है, वो विद्रा भी लगता है, राजपरा भी लगता है, ऐसा मान माया जीव वो सुमित करती है क्या, क्रोध मान माया और लोभ की मिठा क्या मिठा का क्या जीव को सुमित करती है, दुखी करती है और पाप भाव को उत्पन्न करती है, यह शिष्य के प्रवेशता का स्वरूप का प्रश्न है। एक एक गाथा की टीका करते पहले उसका मीनिंग उसमें विषय समझता है, क्या सब्जेक्ट करता है, चित्त की प्रवृत्ता का स्वरूप कहता है, क्रोध मान माया और लोभ का तीव्र उल्लेख है, चित्त को छोड़ो सदा इसमें होता है, वह प्रवृत्ता है, प्रवृत्ता में दुर्भाव है, ये शुभ परिणाम है, उसका ही मूल उद्देश्य है, क्या रोग मान माया मन जो तीव्र रखा हुआ उसका मूल उद्देश्य है, चित्त की प्रसन्नता को अप्रवृत्ता कहते हैं, चित्त प्रसन्न होता है, लेकिन मानवीय कषाय का मूल उद्देश्य है, वो का कषाय परिणाम नहीं है, कषाय के अभाव के परिणाम को दूसरी बात है, पर कषाय की मंदता के परिणाम हो दूसरी बात है, कषाय की मंदता के परिणाम में कषाय का प्रभाव है और विपराशा के परिणाम में कषाय का अभाव है, कदाचित कषाय का विशिष्ट शोषण होने से हमें पर अज्ञानी को मिलती है, ऐसी अव्यवस्था अपने संगठित प्रसन्नता कदाचित कषाय का विशिष्ट शोषण होने से आज प्रकार का शोषण में अधिक मंद होने से अज्ञानी को भी होता है, अज्ञानी को भी लब्धि उत्पन्न होती है, कहते विजय कर लो विजय करते हैं ज्ञान देखा बहुत संयुक्त वस्तु या करते हैं तो कथा बहुत मंद होता है, रावण का बड़ी बड़ी विद्या प्राप्त है आपका कदम पुराना चालू युद्ध हुआ युद्ध विराम नहीं गया थोड़ा देर युद्ध विराम करना क्यों तो मुझे कुछ विद्या और प्राप्त नहीं है हमेशा से जब बने शांति राज भगवान के मंदिर में जाकर के बैठता है और सखत से सखत का जाना तो वो हनुमान जी के बारे सबके बात है तो हनुमान जी को गुप्त रूप से प्रवेश कर लिया था, इसमें उसको पता हनुमान जी को मिल गया, पता चल गया कि अभी जो रावण है वो साधना के लिए मंदिर में उसने प्रमाण निकाला था कि मेरी साधना इतने दिन तक चलेगी दिन की चलेगी, उसने उसके बिना में किसी को मेरे पास नहीं आना है, रात काल कोई भी काम से मेरे पास किसी को आकर के मुझे डिस्टर्ब करना
नहीं,
तो परमात्मा भी ऐसा हनुमान जी ने बनता तो जगह ने पता भी मिल गया तो परेशान हो गए करे क्या रावण हो तो उसको भला करे दूसरे का तो कोई ताकत नहीं हनुमान जी के पास बहुत परेशान जा सकते नहीं पर इधर उसको हटा सकते नहीं साधना में तो उठा क्या मुझे क्या मालूम नहीं क्या मैं उसको बता दू आपने तो सब मत किया था मेरे पास किसी को नहीं आना है साधना में भी इसको हो करो ऐसा ये बनता है फिर नहीं ये अन्याय को बोलता है मुझे बता है संज्ञा इसको भी होता है चला कषाय का उद्देश्य को अनुसरण करके परिणति में है उपयोग को બહુ સમગ્ર કરે એને અપૂર્ણપણે અધુરાપણે આંશિકપણે વિશે આવી અનુસરણ નહીં કરવા વાળે પરિણામ તો અનુરૂપ પરિણામ
મંદિર પ્રાપ્તિ કારણે મીઠાસ શબ્દ આપણે મતલબ બહુ વિશિષ્ટ પ્રકાર છે રખા મીઠાસ શબ્દ છે
મતલબ ક્રોધ અથવા લોભ માયા ચિત્ત આશ્રય પામીને મતલબ ક્રોધ અથવા લોભ માયા ચિત્ત આશ્રય પામીને જીવને કરે જે ક્ષોભ તેને કલુષતા જ્ઞાની કહે ચિત્તમ વા સાધ્ય ક્રોધો વાય યદા માનો માયા લોભો વા ચિત્તમ આસાધ્ય જીવસ્ય કરોતિ ક્ષોભમ
અનુદાય શબ્દ જે વાપર્યો એ કઈ રીતે અનુદાય જે આગળ
અનુદાય શબ્દ અનુસરતા અસમગ્ર અવાંતર ભૂમિકા તો કદાચિત જ્ઞાની નો હતી પણ એ પાછો વળે છે કે ઉદયને નથી અનુસરતો એનું નામ અનુદય છે ધોક યોગ છે તે અનુદય પરિણામ ઉદય પરિણામથી બંધ છે અનુદય પરિણામથી અબંધ પણ એટલે આંશિક મુક્તિ છે આંશિક શુદ્ધિ છે એટલે આંશિક મુક્તિ છે પૂર્ણ શુદ્ધિથી પૂર્ણ મુક્તિ બહુત પ્રમાદ વાળી ક્રિયા જિસમે બહુત પ્રમાદ હો ચિત્ત કી મલિનતા વિષય કષાય મેં લુપ્તતા દૂસરે જીવોં કો દુઃખ દેના ક્યા મિત્રો કો દુઃખ દેના ઓર ઉનકી નિંદા કરના ઇત્યાદિ આચરણો સે જીવ પાપા કર્મ કરતા મલિનતા ખાસ કરકે માયા કે પરિણામ મલિનતા બળ જાતી હૈ ઇન્દ્રિય વિષયો મેં લોલુપતા તીવ્ર આસક્તિ કે પરિણામ ઓર દૂસરે જીવો કો દુઃખ દેના મારના પીટના ઓર ઉનકી નિંદા કરના અનેક પ્રકાર
इत्यादि आचरणों से ही पापाचरण करता है, पापाचरण के परिणाम में पाप का आना होता है, उत्पन्न होता है। परिणाम करने का भाव होता प्रवृत्ति करने का उत्साह ठंडा हो जाता है, तो कषाय तीव्र होने से
प्रमाद में ज्यादा कथा है
तो उसको सुप्रवृत्ति में क्यों नहीं गया, उसको कषाय की तीव्रता को पाप प्रवृत्ति में कषाय की तीव्रता के द्योतक है और प्रमाद में कषाय की तीव्रता का ही क्योंकि उसको शुरू में उत्साह बहु प्रमाद से भरी हुआ आचरण की परिणति सरूपारूप परिणति विषय रूपारूप परिणति और परिताप रूप परिणति पर को परिताप दुख लेना लेना का भाव और पर का अपवाद रूप अपवाद मैंने अवगुण परिणति अपवाद में अवगुण का वाद करना निंदा करना ऐसी परिणति ये पांच अशुभ भाव द्रव पापाचरण के निमित्त मात्र पड़े कारण जो है निमित्त अशुभ भाव का एक अशुभ भाव के निमित्त से द्रव का पापाचरण इसलिए द्रव पापाचरण का प्रसंग को अनुसर करके या अनुलक्षित वह अशुभ भाव भाव पापाचरण है उसका उसको अनुलक्षित देखे तो ये अशुभ प्रकृति का आश्रय होता है, इसका मतलब के यहाँ भाव भी अशुभ है तो अशुभ प्रकृति का आश्रय होता है और अशुभ भाव जिसका निमित्त है ऐसा जब योग द्वारा प्रवेश नहीं करने वाला सुदगल का अशुभ कर्म परिणाम वो द्रव पापाचरण पापाचरण भाव पापाचरण
आपस में न हो अवगुण न हो और अवगुण की बात करे वो तो पापाचरण समझ में आता है, अवगुण और अवगुण की बात करे ये
पापाचरण होता है उसमें भी अपने अवगुण की बात करे तो पुण्याचरण होता है क्या
बरोबर
कैसा न्याय है, दूसरे का अवगुण को कहे तो पापा कर रहा है अपना अवगुण को कहे तो जिंदा करना अपनी दिशा प्रशस्त द्वेश दूसरा का कहे तो वह प्रशस्त द्वेश है और अपना निंदा करे तो प्रशस्त द्वेश
है
विकल्प हो गए नहीं हो गए परिणति भी जाते हैं बार बार विकल्प आने से परिणति हो जाते हैं
भैया ना उपवाद बोलवा दी का पात्र होता है ज्ञानी ना उद्देश्य अपना जो उपवाद बोलिए
तो अनंत संसार में
अनंत
ज्ञानी का अवर्णवाद करना उसको वर्णवाद कहते हैं उपवाद ये नहीं कहते उसको तो
अवर्णवाद
कहते हैं क्योंकि ज्ञानी तो गुणवान है और अज्ञानी से तो अधिक गुणवान है तो उसका जो कोई आगे जो भाव होता है वो उसका देखना होता है उसको अवर्णवाद कहते हैं तो ये तो अनंत संसार का
कारण
है विनय और भक्ति होती है
पूरियों का नहीं करे, कसाई का नहीं करे, सुनना मैंने इच्छाओं का भी जय करे। जय करने वाले कल्याणकारी मार्ग में जीव जिस समय रहता है उस समय उसको पापा को रूप शुद्ध का जरूर हो जाता है। समर पदार्थ का व्याख्यान है, समर
का
समर का अनंतर होने से पाप के ही समर का यह कथन है, अर्थात के पाप के कथन कुछ पृथक होने से ही पाप का समर का कथन करने में मार्ग श्रेष्ठ समर है। क्या लिया है?
मार्ग
ही समर ऐसा लिखा है। उसका निमित्त समर के कारण समर के प्रयोजन से इंद्रियों प्रसार और सुनाओं का जितना अंत से अथवा जितनों का निग्रह करने में आवे, रोक देने में आवे, समर मैंने रोकना उतना अंत से उतना काल पापा समर का द्वार बंद हो जाता। क्योंकि तो इंद्रिय प्रसार और सुनना दोनों में तीनों में पाप होता था, पाप का संभव हो गया। सामान्य की बात करें, पाप की बात करें, सामान्य जिनको सब द्रव्यों में राग द्वेष अज्ञान नहीं रहता, क्या जिनको जगत के सभी पदार्थों में राग नहीं द्वेष नहीं अज्ञान में मोह भी नहीं है, ऐसे सुख दुख में समदृष्टि के स्वामी, ऐसे सुख दुख में समदृष्टि के स्वामी निर्गंत महात्मा, समदृष्टि के स्वामी कौन है? निर्गंत महात्मा के सुबह सुबह श्रम नहीं होता, सुबह श्रम भी नहीं होता और सुबह श्रम भी उनको
नहीं होता, उसको
सुबह कहने में
आता है। आप प्रवृत्ति का गुणस्थान मत है,
स्वतः गुणस्थान की ज्ञान शिक्षक बात करेंगे, आत्मा विशेषता है, तो दूर निर्द्रा से समर्थ घण से शुरुआत मुख्य मार्ग में चौथा अनुष्ठान क्योंकि मार्ग मार्ग से समर्थ है कहीं ना मोक्ष मार्ग चौथा अनुष्ठान से शुरू है। यह सामान्य रूप से समर का प्रतिपादन है, जैसे समग्र कर्तव्य प्रति राग रूप द्वेष रूप के मोह भाव नहीं, वह भिक्षुक को यहाँ तो मुनिपणा का बात दिया है आचार्य महाराज ने, तो यहाँ मुनि का बात दिया, वह भिक्षुक को तो जो निर्विकार चैतन्यपणा के कारण है कम सुख है, सुख और दुख में सम परिणाम है, कोई भी उसको राग द्वेष का नहीं है। वैसे शुभ और अशुभ कर्म का आश्रय उसको और शुभ आश्रम और अशुभ का आश्रय होता नहीं, परंतु सुंदर ही होता है। मूल रचना विश्व और शब्द है, मूल रचना विश्व शब्द ने अर्थ मान ही दिया, निग्रह समाज मान लिया,
निग्रह
समाज मान लिया, विश्व एक मुख्य तैयार बात है।
तो बिल्कुल राग द्वेष ने अज्ञान न वर्ग तो हो तो तेलुगु रूप कर देंगे,
प्रधान यही बात मुख्य रूप से राग द्वेष और मोह बहुत अल्प मात्रा में रहा है मेरा, इसलिए यहाँ भिक्षु ऐसा तो समय दृष्टि को भी चला गया है थोड़ा बहुत, फिर भी वहाँ प्रधान का मुख्य मार्ग नहीं है, राजमार्ग नहीं है, राजमार्ग घूमने पर आप बता रहे यहाँ से तो यहाँ ऐसा समझना कि मोह राग द्वेष रूप परिणाम का निरोध व भाव संवर है, ये तो भाव संवर तो मोक्ष मार्ग में होता है, वितराग का मैं केवल तेरह अनुष्ठान में समर की बात नहीं चलती, वहां तो मोक्ष की बात चलती है। क्या है? तेरहवें अनुष्ठान में तो मोक्ष का अधिकार है और मुनिपणा में समर निर्णय का अधिकार है, यहाँ समर का अधिकार चलता है, इसलिए मुनिपणा के बाद लिया है, फिर भी नुकसान देना चाहिए
नहीं।
न्याय की जगह है। मोरागेश्वर नाम का निरोध वह भाव संवर है और वह मोरागेश्वर परिणाम का निरोध जिसका निमित्त है क्या मोरागेश्वर परिणाम का निरोध जिसका निमित्त है ऐसा जो योग द्वारा प्रवेशने वाले सुगुणों का शुभ शुभ स्वरूप परिणाम का निरोध उसको द्रव संवर कहने में परमाणु का प्रबल हो गया समझा देना उसका मुख्य मार्ग करते हैं संवर का जिस संयोगी को योगों में मैंने मन वचन गाया के जब पुण्य पाप की प्रवृत्ति नहीं होती मन वचन गाय तब उसको शुभ शुभ कर्म के कर्तृत्व का संवर हो जाता है निरोध हो जाता है जनरल परिभाषा करूँ जिस योगी को वीरक अर्थात सर्वतः निवृत बचता हुआ योग में मैंने मन वचन मन और काया प्रतिक्रिया में शुभ परिणाम रूप पुण्य अथवा अशुभ परिणाम रूप पाप जमी नहीं होता तब वे शुभाशुभ भाव द्रव्य कर्म का जिसमें निमित्त है स्वकार्य के अभाव के कारण लिए होने से उसको संभव होता है इसलिए यहाँ इनका समय शुभाशुभ परिणाम का निरोध भाव में पाप संवर और द्रव्य पाप संवर का प्रधान हेतु समझने लायक है उभारने लायक भाव से भी नहीं और मनोवचन माया का योग से भी ध्यानस्थ अवस्था में निष्कंप अवस्था में नया धर्म द्रव्य कर्म के आश्रम को जो रोकता है ऐसा रोकने में निमित्त ऐसे जो शुभ परिणाम है शुभ भी नहीं और
शुभ भी नहीं
स्वभाव तो को देने में
आता है
एक सुषुम वाले
जो
योग का निरोध करके तप करता है क्या
तप करता है
मन वचन काया के योग का निरोध करके तप करता है वह निश्चय से अनेक प्रकार के कर्मों के निर्जरा करते हैं तो तब करते हैं उसमें स्वरूप होते हैं वो बात उसमें ले लेना अभी निर्जरा का व्याख्यान चलेगा क्या
निर्जरा
निर्जरा का स्वरूप का कथन है संवर अर्थात सुभाष को परिणाम का निरोध और योग मैंने शुद्धों की योग क्या ये सब योग मैंने
शुद्धों
की योग योग का इसके कारण से संवर और योग से सुभाषुभ परिणाम का नास्ते से नहीं आना और अस्त से शुभ योग का उत्पन्न होना इस कारण से युक्त मैंने ऐसे भाव वाला पुरुष को अनशन अवमोदर्य वृत्ति परिसंख्या रथ परित्याग गोवित शेरासन और आय परेशानी भेद डाले छे बहिर्ग तप सहित और प्रायश्चित विनय विजावेग उपाध्याय विस्तृत और ध्यान ऐसे भेद वाले छह अंतरंग तप सहित ऐसे बहुविध तप सहित प्रवृत्त होते हैं बहुत पुरुष वास्तव में खरेखर बहुत तप की निद्रा करता है इसलिए यहाँ इस गाथा में कर्म का वीर्य का मैंने कर्म की शक्ति का शासन करने में समर्थ क्या कर्म की शक्ति शासन उसको बिठा दिया बैठ जा उसको खड़ा नहीं होना है शासन करने की शक्ति शासन करके पतला करना हीन करना नष्ट करना क्षीण करना उसको लिया है ऐसा जो बहिरंग और अंतरंग का उसके द्वारा बुद्धि को प्राप्त हुआ सुख उपयोग, क्या कैसा सुख उपयोग बुद्धि को प्राप्त हुआ है ऐसा जो सुख उपयोग भाव निद्रा है दो उपयोग को यहाँ भाव निद्रा जी में आई है और उसका प्रभाव है निरस्त हुआ ऐसा उपाधित कर्मों कुलों का एक देश संक्षय जो कर्म ने उपाधित किया था उसका पूरा पूरा नहीं लेकिन कुछ उसका क्षय हो जाना संक्षय मैंने अच्छी तरह शून्य प्रकार क्षय हो जाना उसको द्रव्य निद्रा कहने में भाव निद्रा और द्रव्य निद्रा का जो उमा स्वामी महाराज ने तपसा निर्जरा च ऐसा शब्द लिया ने तपसा निर्जरा च तो उसमें क्या हो गया कि अनुमान और मुझे दूसरी बात आई उपाध्याय ये तो लोग करने लगे और मानने लगे कि हम तो तपस्या से निर्जरा करते हैं ये तो नास्ति की बात है अस्ति की बात तो शुद्ध उपयोग है शुद्ध उपयोग बिना उसको सब कह सकते हैं
नहीं
योग योग का निरोध करके तब करता है योग निरोध करके ऐसा किया है योग संवर युक्त निरोध में योग संवर योगे ही निरोध गए ही ऐसा तो योग निरोध संवर पास निरोध करे बहुविध तपो तपो सह परिणाम नियम की निर्जरा बहु कर्म के लिए आए जो आत्मा का साधक समुद्रयुक्त होकर आत्मस्वरूप को जानकर सदरूप ध्यान करता है वह महात्मा साधु कर्म रज को झाड़ जाता है यह निर्जरा का मुख्य कारण का कथन है निर्जरा का मुख्य कारण क्या संवर अर्थात सुभाषु परिणाम का परम निरोध है युक्त ऐसा जो जीव वस्तु स्वरूप को मैंने एक वाले तत्व को बराबर यथार्थ रूप से जानता हुआ पर प्रयोजन से जिसकी बुद्धि व्यावृत हो गई है पर प्रयोजन से वो पीछे चला गया है पर प्रयोजन में अपना कोई कारण है
नहीं
और केवल स्व प्रयोजन साधने में जिसका मन उद्दीप्त हुआ है कैसा है निज प्रयोजन को साधने में जिसका मन में परिणाम उद्यत हुआ है मैंने पुरुषार्थ युक्त हुआ है उद्यमत हुआ है ऐसा अवस्था हुआ आत्मा को स्व उपलब्धि से उपलब्ध करके क्या स्वयं के स्वानुभव द्वारा अनुभव करके ये स्व उपलब्धि से उपलब्ध है गुण गुणी का वस्तुपणे अभेद होने से क्या गुण गुणी का भी वस्तु रूप से अभेद होने से और ज्ञान को और स्व को स्व बड़े अविचल संक्रांति वाला होकर के ज्ञान को और स्व को क्या मैं आत्मा शब्द से ज्ञान कह रही थे ज्ञान मां निजात्मा मां निजात्मा मे निश्चल परिणति करेंगे उसका संचेतन संवेदन अनुभवन करना वो ध्यान है अविचल में स्थिर उपयोग होकर के संचेतता है अनुभव करता है वह जीव वास्तव में अत्यंत नीचनीय वर्तता सका क्या राग का शिकार उसमें बिल्कुल नीचनीय वर्तता सका नहीं रही वो राग रही वर्तता सका जिसको सोचने लिप का समय प्रक्षीण हुआ है दूसरा पट पड़ता लिया कि जिसको तेल चिकना बदा सिंगार का शिकार क्षीण हो गया है ऐसा शुद्ध स्फटिक का स्तंभ की मापक कैसा शुद्ध स्फटिक का थामला अगर चैतन्य अगर कैसा हो गया शुद्ध स्फटिक चैतन्य स्फटिक का स्तंभ जैसे पूर्व उपाधिक कर्म को फिर भी नाचता है निर्जरा कर लाता
है
इस गाथा से ऐसा दर्शाया कि निर्जरा का मुख्य हेतु ज्ञान है, यह ज्ञान शुद्ध भाव ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। तो निद्रा का मुख्य हेतु नींद स्वरूप में द्वारा लीन हो जाना, ऐसा जो ब्रह्म ज्ञान है वो निद्रा का
खड़ा
कर्म का ढगला नीचे हो जाए,
क्या
गई जिसको राग द्वेष मोह योग प्रेम नहीं कर नहीं है उसको सुभाषुभ कर्म को जलाकर भस्म कर देने वाली ध्यान रूपी अग्नि प्रकट होती है।
वाह वाह,
यह ध्यान का स्वरूप का कथन है। शुद्ध स्वरूप में अविचलित चैतन्य परिणत वह खरेखर ध्यान है। ध्यान की परिभाषा में ध्यान किसको कहना, ज्ञान को ज्ञान में स्थिर हो जाना, ज्ञान को आत्मा में स्थिर हो जाना, अविचलित परिणाम हो जाना, उसको ध्यान कहते हैं। वह ध्यान प्रतिभा की विधि योग कहने में आती है। में ध्यान कैसे प्रकट हुए उसकी कार्य पद्धति कहने में आती है कि जब वास्तव में योगी दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय के विकार दुर्गल कर्म होने से वह विपाक को अपने से भिन्न ऐसा अचेतन कर्मों में समेट करके मैंने पर है मेरा लय नहीं है तदनुसार परिणति से उपयोग को व्यावृत करके परिणाम की धारा को परिणति कहते हैं। उसमें उपयोग को पीछे पाठा वाले वापस ले लिया, उपयोग को व्यावृत करके अर्थात विपाक के अनुरूप परिणाम परिणाम में से उपयोग को निवर्तवा करके मोही रागी और दृष्टि नहीं होते ऐसे जो उपयोग को अत्यंत शुद्ध आत्मा में ही निष्पन्न रूप से लीन करते हैं, ठीक कर देते हैं, अत्यंत ठीक कर देते हैं। तब यह योगी को कि जो योगी अपने निष्क्रिय चैतन्य रूप स्वरूप में विक्रांत है, कर गया है, दीन हो गया, अपना निष्पन्न चैतन्य में
दीन हो गया
विक्रांत है, मन वचन काया को बाता नहीं, बाता मेरे अनुभव का नहीं, चिंतन का नहीं, ध्यान करता
नहीं
और स्वकर्म में व्यापार नहीं करता, अपने कर्मों का भी व्यापार रोग उपाधि कर्मों के साथ प्रगति नहीं करता उसको सफल शुभाशुभ कर्मों के ईंधन को जलाने में समर्थ होने से अग्नि समान ऐसा परम पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय भूत ध्यान प्रकट होता है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय सिद्धि इधर ग्रंथ लिखा है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का ग्रंथ लिखा है, ध्यान का बहुत सुंदर ऐसा ध्यान जिसको होता है ऐसा ध्यान से कर्म रूपी सब लगड़े जल जाते हैं। ये परम पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय भूत है, ऐसा ध्यान है और वो ध्यान प्रकट होता है। मोक्ष प्राप्ति मूल बताए है, धर्म भी क्या है कि हमारा भी त्रिरंग शुद्ध जीवो आत्मा का ध्यान करके इंद्रपणा और लोकांतिक देवपणा को प्राप्त करता है और वहां से शहर करके निर्वाण को प्राप्त करता है। सुखियों का कोई अंत नहीं, शास्त्र का कोई पार नहीं, काल थोड़ा है और हम भी दुर्मेघ है, दुर्मेघ मैंने हमारी बुद्धि मंद है, हमारी बुद्धि के आचार्य कहते हैं हमारी बुद्धि
मंद है।
आनंद है, इसलिए जो केवल सीखने योग्य है कि जरा मरण का क्षय करे आचार्य ऐसे कहते हैं कि हम तो नीणी कालो थोड़ो वयम से दुम्बे हाँ थोड़ो थे हमें दुम्बे हाँ हमें उसके दुम्बे वाला कहते
हैं
आचार्य कहते हैं બીજી વિદ્યા શીખવી શાસ્ત્ર માં તો હજારો વાત છે, આખા લોક નું શોધ બ્રહ્માંડ નું વર્ણન છે શાસ્ત્ર માં, અને એનો વિસ્તાર છે. અમારે શું કહ્યું, અમારે ક્યાં છે બ્રહ્માંડ માં રખડવું છે? અમારે તો જન્મ મરણ થી મુક્ત થઈને સિદ્ધાલય માં જવું છે, એટલે એક જ વિદ્યા શીખવી છે, બીજી વિદ્યા અમારે શીખવી નથી. કેમ કે અમારે કઈ કાળ નથી, બુદ્ધિ એ નથી, વખત પણ નથી ને બુદ્ધિ એ નથી. સમર્થ આચાર્ય છે ક્ષેત્રના
સમર્થ આચાર્ય,
હા સમર્થ આચાર્ય છે. આમ કે વખત જમાવવા જેવું નથી, બીજું કઈ શીખવા જેવું નથી, એ જન્મ મરણ નો ક્ષય થાય એક જ વાત
શીખવાય. દેવ મંદર ભગવાન નો જય પરમ.